का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी कटी पतंग का तीसरा एवं अंतिम भाग। उर्वशी पर तो मानो आसमान टूट पड़ा हो। जिस इंसान को उसने अपना सर्वस्व सौंप दिया, उसने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। किसे जाकर वह अपनी अर्ज सुनाए, कहां जाकर अपने दुख की गुहार लगाए। एक बार तो उसके कदम रेल की पटरी की तरफ मुड़ गए, बेजान सी पत्थर की मूरत बनी वह बेसुध चली जा रही थी। तभी एक जान पहचान के व्यक्ति ने, जब वह उसकी साइकिल से टकराने लगी, मैडम जी किधर जा रही हैं पैदल पैदल, आपका घर तो दूसरी तरफ है। क्या बात, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको रिक्शा पर बिठा देता हूं। उर्वशी जैसे कोई बुरे सपने से जगी हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, दरअसल सर में कुछ चक्कर सा लग रहा था, परंतु अब ठीक है, मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी, आप चिंता ना करें। कहते कहते उर्वशी वापस अपने घर की तरफ मुड़ गई। घर पहुंची तो उसके बच्चे भागे भागे उसके पास आ गए।
मम्मी कहाँ रह गई थी, आज बहुत देर में लौटी हो, बड़ी भूख लग रही है, कुछ बनाकर दो ना।
उर्वशी मन ही मन सोचने लगी, हाँ शायद बहुत देर हो गई है। भगवान के भरोसे अपने जीवन को छोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह तो इस समय चाहकर भी ना रो सकती थी ना मर सकती थी। उसके बच्चों के मासूम चेहरे उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। उर्वशी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। वह हमेशा तनाव और अवसाद की हालत में रहती, परंतु अपने बूढ़े माता पिता के मुरझाए चेहरे देखकर उसे जीने की हिम्मत दोबारा बटोरनी पड़ी। घर के खर्चों में सहयोग के लिए उसने पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ले ली और दिन भर वहां खड़ी होकर काम करती। वहां एक दिन एक आदमी आया जिसका नाम जीत पन्नू था। उसने उर्वशी को 20,000 रुपए देकर इन्वेस्ट करने को कहा। उर्वशी को बड़ी हैरानी हुई कि बिना जान पहचान के वो इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है। उसे क्या पता था कि वो तो उसकी सुंदरता की तरफ आकर्षित हुआ है। कभी कभी उसे अपनी सुंदरता अभिशाप लगने लगती, जो हर जगह बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। वह तो हर इंसान में भगवान का रूप देखती, पर जब असलियत खुलती तो उसे शैतान नजर आता। जीत पन्नू के दिए पैसे किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एक बार उसे कुछ पेपर पर उसके साइन करवाने थे। उसने जब उसे फोन किया कि वो पेपर पर आकर साइन कर जाए, तो उसने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह उसके घर आकर साइन करवा जाए। उर्वशी का काम ऐसा था कि उसे अपने क्लाइंट्स के कहे मुताबिक चलना पड़ता था, इसलिए वह उसके बताए पते पर पहुंच गई। उसका घर काफी बड़ा था। जब वह सहमते सहमते अंदर गई तो वह ड्राइंग हॉल के कोने में सिमट कर बैठ गई और जल्दी से पेपर साइन करने को कहने लगी। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतने बड़े घर में कोई और सदस्य नहीं दिखाई दे रहा था, यहां तक कि कोई काम करने वाला भी नहीं। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आया और अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, अरे ये क्या, इतना झिझक क्यों रही हो? आराम से बैठो और बताओ कि पीने के लिए क्या लोगी? नहीं नहीं पन्नू जी, बस आप इन पेपर्स पर साइन कर दें, मुझे जल्दी है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ पीने को लाता हूं तुम्हारे लिए। क्या लोगी, ठंडा या गर्म? आज तो तुम बहुत हसीन दिख रही हो। चलो तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। उर्वशी को डर लगने लगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उसे उसकी नीयत पर शक होने लगा। तभी वह बहाना बनाकर बाहर चली गई। ओह, मैं तो कागज बाहर ही भूल आई, अभी लेकर आती हूं। अरे कागज वागज को मारो गोली, तुम जैसी हसीना पर तो मैं अपनी सारी जायदाद वैसे ही कुर्बान कर दूं। ये क्या 200-400 रुपए के लिए धक्के खाती रहती हो? मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हें जीवन भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उर्वशी उसकी बातों को नजरअंदाज कर बाहर चली गई और जल्द से अपना स्कूटर स्टार्ट किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घबराहट और तनाव में उर्वशी का उस दिन घर जाते समय स्कूटर पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसके माता पिता उसके इलाज के बाद उसे अपने घर ले गए। वहां वह 6 महीने रही। उसका पति वहां पर छोड़कर उसे बेफिक्र हो गया, जैसे उसकी उर्वशी के प्रति कोई जिम्मेवारी ही ना हो। उसकी माँ उसके बच्चों को वहीं से स्कूल भेजती और सारे काम करती। उसके भाई ने भी उसके लिए रात दिन एक कर दिया। उर्वशी को लगता जैसे उसका जीवन ठहर गया हो। उर्वशी को 1 साल लग गया ठीक होते होते, और इतने समय में उसका पोस्ट ऑफिस का काम भी ठप हो गया। ठीक होने के बाद भी उसके मन में स्कूटर चलाने को लेकर एक अनजान सा डर बैठ गया और शारीरिक के साथ साथ उसकी मानसिक हिम्मत भी अब बिल्कुल शिथिल पड़ गई। अब तो उसकी ताकत बिल्कुल दम तोड़ गई। उसे शराब की लत लग गई। अपने दुख भुलाने के लिए उसे कोई सहारा नजर नहीं आता था। पति धीरज को उसके किसी भी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसे तो समय पर अपने हर काम किए हुए चाहिए थे। टूटी हुई पतंग नीले आकाश की ओर फिर एक बार बढ़ने लगी। इस बार पास के किसी मोहल्ले वाले ने उसे अपने कब्जे में करना चाहा। पकड़ते पकड़ते वह पतंग उसके हाथ से भी छूट गई थी और जाकर किसी समाज सेवी के घर के आगे एंटीना पर फंस गई। जब उसने समाज सेवा के तहत पौधारोपण और स्वास्थ्य चेकअप के कैंप आदि अन्य कई कार्यक्रम किए तो वहां उसकी मुलाकात कुलभूषण नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसकी काफी मदद की। वह कई विषयों पर उससे राय लेती ताकि प्रोग्राम सफल हो और लोगों को उसका भरपूर फायदा मिले। फिर धीरे धीरे कुलभूषण का उसके घर पर काफी आना जाना होने लगा, यहां तक कि उसके पति का विश्वास भी उसने जीत लिया। वह उसके घर के सदस्य की ही तरह हो गया। हर दिन त्योहार पर वह उसके बच्चों के लिए महंगे तोहफे लेकर आता, जो कि वह अपने बच्चों को खरीद कर नहीं दे सकती थी। उर्वशी ये देख मन ही मन बहुत खुश होती और कुलभूषण को एक भला इंसान समझने लगी। एक बार की बात थी, जब दिवाली का त्योहार आने वाला था तो कुलभूषण दिवाली का तोहफा लेकर अचानक उसके घर पर पहुंच गया। तब वह घर पर अकेली थी। उसके पति बच्चों के साथ अपने गांव किसी जरूरी काम से गए हुए थे। कुलभूषण ने वहीं से फोन पर जब उसके पति से बात की तो उसे पता चल गया कि वे लोग अगले दिन आने वाले हैं। यह सुनकर कुलभूषण के चेहरे की खुशी साफ देखी जा सकती थी। उर्वशी को अकेला पाकर कुलभूषण उससे कहने लगा, चलो उर्वशी, आज तुम भी अकेली हो घर पर, इसलिए चलो कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें घर पर वापस छोड़ दूंगा। कुलभूषण की नीयत भांपते हुए उर्वशी बोली, नहीं नहीं कुलभूषण जी, आज तो मैंने पहले से ही अपनी सहेलियों को खाने पर बुला रखा है। फिर किसी दिन जब धीरज भी होंगे तब सब साथ साथ चलेंगे। अरे ये क्या उर्वशी, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतना सुनहरा मौका फिर पता नहीं कब मिलेगा। अपनी सहेलियों को मना कर दो और साथ में मैं तुम्हें दिवाली पर बाजार से कुछ खास तोहफे लेकर देना चाहता हूं। तुम्हें नहीं पता मैं मन ही मन तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। आज की रात मेरे नाम कर दो, बदले में मैं जिंदगी का हर सुख तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर उर्वशी एकदम से हक्की बक्की रह गई और उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपके से अंदर जाकर अपनी खास सहेली जो कि उसके घर के पास ही रहती थी उसे फोन करके जल्दी से घर पर बुला लिया। इस तरह उसने बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया। कभी कभी उसे अपने आप से नफरत होने लगती। जहां पर भी वह जाती हर कोई उसे उसके जिस्म को घूरता हुआ दिखाई देता। किस किस का नाम लेती वह, उसकी तालिका लंबी होती जा रही थी। इसी तरह अपने सामाजिक क्षेत्र में लोगों के काम करवाने वह जिस भी अधिकारी के पास जाती, हर कोई बदले में उसके साथ हमबिस्तर होना चाहता। इस तरह की वहशी नजरों को अपनी तरफ घूरते देख उर्वशी की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म होती जा रही थी। उर्वशी का धीरे धीरे आदमी जात पर से विश्वास उठता जा रहा था। उर्वशी जो कि किसी समय में इतनी चुलबुली हुआ करती थी, धीरे धीरे अंतर्मुखी होती गई। बस हर समय घर पर रहती, ना किसी से मिलना पसंद करती और ना ही उसकी किसी काम करने में दिलचस्पी रही। हर समय अपनी दुनिया में खोई रहती, मन ही मन आत्ममंथन करती रहती कि औरत को जीवन में कुछ करके दिखाने के लिए ना सिर्फ अपने परिवार के दायरे में संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। क्या उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं? एक कटी पतंग की तरह उसे अपना जीवन मझधार में लगने लगा। गली में पकड़ो पकड़ो का शोरगुल सुनकर अचानक उर्वशी की तंद्रा भंग हुई। उसने देखा सब लोग उस आसमानी रंग की पतंग के पीछे भाग रहे हैं और वह पतंग गली के एक बिजली के खंभे पर आकर अटक गई। सब लोग उस पतंग की ओर ललचाई नजरों से देखने लगे। हर कोई उस पतंग को पा लेना चाहता था। तभी उर्वशी के पड़ोस का एक मासूम सा गंभीर प्रवृत्ति का लड़का भागा भागा आया। वहां बहुत से लड़के उस पतंग को उतारने की कोशिश में लगे थे, परंतु उस लड़के ने अपनी सहनशीलता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए बड़ी खूबसूरती से उस पतंग को उतार लिया और उसे लेकर तेजी से अपने घर की तरफ भागा। सब बच्चे उसका मुंह देखते रह गए। वह भागता रहा जब तक कि वह अपने घर पर सुरक्षित तौर पर उसे ना ले गया। वह अपनी इस प्राप्ति पर बहुत खुश था। वह पतंग धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन गई। वह जब भी वह पतंग उड़ाने लगता तो उसे उसके कट जाने का डर फिर सताने लगता कि पता नहीं अगर इस बार यह पतंग कट गई तो इसकी क्या दुर्दशा होगी। और उसने फिर उस पतंग को उड़ाना ही छोड़ दिया। वह उस पतंग को बड़े प्यार से अपने पास संभाल कर रखता। उर्वशी ने जब उस लड़के का उस कटी पतंग के लिए इतना मुख देखा तो बरबस ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उस लड़के के भोलेपन को देख वह सोचने लगी कि भला कोई एक कटी हुई पतंग से भी इतना मुख कर सकता है, जबकि बाजार में एक से एक नई पतंगें मिलती हैं। उसे अपना वजूद भी एक कटी पतंग की तरह लगने लगा, जिसे हर कोई अपना समझकर पकड़कर उड़ाना चाहता है। वह सोचने लगी कि काश उस लड़के की तरह उसे भी कोई मसीहा मिल जाता, जो उसकी कद्र करता और उसे इस तरह अपने पास सहेज कर रखता। पर एक पतंग के और एक औरत की वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर है। उस पतंग को तो खंभे पर से उतारने का साहस किसी ने दिखा दिया, परंतु क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि उसे मझधार से उभार सके और खंभे पर लटके उसके जीवन को तार सके। आजकल के जमाने में एक कटी पतंग की तरफ इतनी आत्मीयता दिखाए, अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी कटी पतंग का तीसरा एवं अंतिम भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।